ऐसे भक्त भी अपने मन और इंद्रियों को मंदिर में आते समय भगवान के दर्शन करने में आंखों को इस्तेमाल करता है, पांव को इस्तेमाल करता है मंदिर आने में, हाथ को इस्तेमाल करता है मंदिर को पहुंचने में, ऐसा करता है ना, करेक्ट। लेकिन जब हम कुछ जैसे गांधी के पास तीन बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, देखा आपने, एक बंदर ऐसा बैठा है, दूसरा बंदर ऐसा बैठा है, तीसरा बंदर ऐसा बैठा है, तीन बंदर है। इसका मतलब है हमारे नाम जप में दो बड़े डिस्ट्रैक्शन है, आंख और कान। तो कान से कुछ मोबाइल से आवाज आता है, गड़ 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 गड़, तुरंत हमारा ध्यान चला जाता है उधर, नहीं तो आंखों से कुछ देखते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या करते थे, उनके घर में उधर गौतम द्वीप में उन्होंने एक छोटा कमरा बनाया सीमेंट में, ऐसे उसके अंदर बैठकर पूरा अपने आंख को बांध देते थे ऐसे एक टवल से, ऊपर बांध करके अर बैठकर हरे कृष्ण ऐसा करते थे नाम जब। आप सनातन गोस्वामी की गुफा देखिए वृंदावन में, तो भूमि से अंदर इतना, अगर भूमि उधर है ऊपर से इतना नीचे और इतना दूर अंदर, ऐसे एल शेप्ड एक गुफा है। तो 500 साल के पहले, 4-5 साल के पहले तो वृंदावन एकदम जंगल था, मोर आवाज कर रहे थे उधर, लेकिन उस समय में भी उन्होंने ऐसे एक शांत अवस्था में जाकर नाम जप किया उन्होंने। तो हम आंख और कान ये दोनों को संभालना चाहिए, यू नो द रोमिंग ईयर्स एंड डिस्ट्रैक्टेड ईयर्स एंड रोमिंग आईज बोलते हैं उसको। तो इस तरह इंद्रिया और मन, इनको कृष्ण के सेवा में कैसे हमेशा जुड़े रखना और देखते रहना कि हम इंद्रिय और मन को गलत दिशाओं में हम छोड़ते नहीं। इस तरह ये गोदास गोस्वामी के बारे में बताया गया है इधर, जो अपने मन और इंद्रियों को कृष्ण के सेवा में लगाते हैं वो गोस्वामी हैं, कृष्णदास है, नहीं तो वो गोदास हैं, ऐसे बताते हैं। देखिए एक महत्वपूर्ण बात इधर बताना चाहिए, ये उपदेशामृत के पहले श्लोक का पहला शब्द क्या है, उपदेशामृत वाचो वेगम। तो हम जितना अपने जिह्वा को कंट्रोल करते हैं, हम दूसरों के बारे में दोष आरोपण नहीं करते हैं, अन्य भक्तों के निंदा नहीं करते हैं, हम अपने को बड़ापा नहीं करते हैं, हम कितने बड़े हैं अपने बारे में हम बताते नहीं हैं, उतना हमारे मन शांत रहेगा। क्योंकि हमारे जिह्वा और मन के बीच में एक संबंध है, हम जितना जिह्वा से दूसरों का दोषारोपण करते हैं और खुद की बड़ापा करते हैं उतना मन भी विचलित होता है बहुत है। और इसके कारण क्या होता है, हम उन भक्तों को देखते हैं, उदाहरण के लिए अगर एक भक्त दूसरे भक्त के बारे में कुछ दोषारोपण किया तो वो भक्त जाकर बोल देता है इस भक्त को, तो वो आकर आपको झगड़ा करने के लिए आएगा, इसमें घंटों घंटा चला जाएगा, मैं ऐसे नहीं बोला वैसे नहीं बोला तुम समझे नहीं मैं वैसा, इस तरह इसमें घंटों घंटे चला जाता है इसमें। इसलिए हमारे जिह्वा को कंट्रोल करना चाहिए, ये उदाहरण दिया हमने जिह्वा को गलत प्रयोग कैसे नहीं करना चाहिए ऐसे। तो कलयुग में हरि नाम और वैष्णव सेवा ये दो चीज के बारे में बताया गया है। इधर एक अच्छा सुंदर एक तस्वीर दिखा गया है कि जब हमें हमारे अंदर वैष्णव सेवा होता है, भोग वृत्ति नहीं है सेवा वृत्ति है, तो कृष्ण बहुत खुश हो जाते हैं और उसके कारण हरिनाम में रुचि जागृत हो जाता है और हम अच्छी तरह और हरिनाम करते हैं और अच्छी तरह सेवा करते हैं और कृष्ण खुश हो जाते हैं और हरिनाम में रुचि बढ़ता है ऐसे, इस तरह बताया गया है। तो ये बड़ा स्लाइड शो है, पूरा मैं नहीं दिखाने वाला हूँ, ये सिर्फ नाम के ना ऊपर जोर दिया मैंने अभी तक, क्योंकि नाम अगर हम अच्छी तरह करते हैं उससे कृष्ण कथा सुनने के लिए भी रुचि जागृत होता है, कथा रुचि भी जागृत होता है और नाम में रुचि और जागृत होगा जब हम महान भक्तों की सेवा करते हैं, वैष्णव सेवा करते हैं, वैष्णव सेवा से नाम रुचि और नाम रुचि बढ़ने से और कथा रुचि भी बढ़ता है और कथा में जितना रुचि बढ़ता है ना नाम में भी रुचि बढ़ेगा, दोनों में संबंध है। जैसे हमारा अनुभव है जब हम पुणे में एक बार हम अघासुर वध के संबंध में हम कथा बता रहे थे, तो मैं 2-3 हफ्ता सुनाता मैं कथा अघासुर वध के संबंध में, आपने सुना है अघासुर वध, तो वो 4-5 प्रवचन दिया हमने, उस पूरा हफ्ता हमको लगा कि ऐसे नींद में भी हमको याद आया बड़ा अगासुर का मुख खुला है और कृष्णा और गोप बालक सब अंदर जा रहे हैं, कैसे कृष्ण ने वध किया उसको, इतना हमारे चेतना के अंदर पूरा वो बस गया ऐसे। तो इस तरह हम भगवान की कथा में की महिमा ऐसा है, जितना हम ऐसे कथा अच्छी तरह ध्यान से श्रद्धापूर्वक हम सुनेंगे, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण में लगन, कृष्ण में रुचि सब बढ़ता है, तो नाम जब भी अच्छा बढ़ेगा उससे। इसलिए हम नियमित रूप से हमें स्टडी सर्कल चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि मेरी इच्छा है कि जीबीसी से लेकर बाकी सब भक्तों का अच्छी तरह ट्रेनिंग हो और अच्छी तरह ट्रेनिंग एजुकेशन दिया जाए सब भक्तों को, ताकि हमारे सारे संस्था मजबूत बन सकता है। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं लेटर में। देखिए इधर बताया गया है कि कभी कभी एक व्यक्ति शुरू करता है एक संस्था को, जैसे प्रभुपाद जी थे अमेरिका में, प्रचार शुरू किया, तुरंत सैकड़ों लोग जुड़ गए उनके साथ। जीसस ऐसे ही अमेरिका, वो भी ऐसे शुरू किया था प्रचार, जीसस के अनेक अनुयायी हो गए ऐसे, मोहम्मद ने शुरू किया उनके अनुयायी हो गए। तो एक महान भक्त होता है भगवान के, चैतन्य महाप्रभु अभी नवद्वीप को छोड़कर वो जगन्नाथपुरी आए थे और दक्षिण भारत गए, प्रचार किया, उनके अनेक लोग जुड़ गए। लेकिन ये लोग जुड़ने के बाद आप देखेंगे दुनिया में, आजकल आप टेलीविजन में भी देखते हो कुछ बड़े बड़े लोग आकर बोलते हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जब मर जाता है सब लोग छोड़ देते हैं, सब लोग, क्योंकि उसके ऊपर निर्भर थे सब लोग। अगर वो व्यक्ति उसका देहांत हो गया सब लोग छोड़ देंगे, ऐसे कुछ नहीं रहेगा। ऐसे भारत में बड़े बड़े वक्ता हैं, बोलने वाले हैं, वो लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक संस्था को खड़ा किया। संस्था का मतलब क्या है, वो व्यक्ति गुजरने के बाद भी उसके अनुयायी, जैसे प्रभुपाद जी के वैकुंठवास होने के बाद प्रभुपाद के शिष्य परम पूज्य लोकनाथ महाराज और बाकी ऐसे अनेक गुरु वर्ग इस इस्कॉन संस्था को चला रहे हैं, है कि नहीं है? तो अभी इन ये लोग इनके शिष्यों को तैयार कर रहे हैं ताकि ये संस्था सैकड़ों हजारों सालों के लिए संस्था चलते रहे। लेकिन ये संस्था जब खड़ा हो जाता है, एक व्यक्ति आया था सिटी बैंक से, वो बोला हम सिटी बैंक में भी सारे दुनिया में हम लॉ एंड ऑर्डर लाना चाहते हैं, लेकिन इस्कॉन जैसे हम कभी नहीं ला पाएंगे, ऐसे बोला उन्होंने। क्योंकि आपके इस्कॉन मंदिर में कहीं भी जाओ दुनिया में प्रभुपाद जी का मूर्ति होता है, लोग जाकर दंडवत प्रणाम करते हैं उधर, उसके बाद राधा कृष्ण का है, गौर निताय का है। अमेरिकी व्यक्ति हो, लंदन की व्यक्ति हो, कनाडा की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, भारत की व्यक्ति हो, कहीं कोई भी हो, सब लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, माता हैं साड़ी पहनती है, और सब मंदिर में आते हैं, पहले प्रभुपाद को दंडवत, उसके बाद भगवान को दंडवत, सब ऐसे तिलक पहनते हैं, ऐसे कंठी माला पहनते हैं। तो ये स्टैंडर्डाइज कर दिया प्रभुपाद जी ने ऐसे। तो वो बोला कि हमारे बैंक में हम कर नहीं पा रहे हैं, वो बोल रहे थे वो, हम करना चाहते हैं सारे दुनिया में स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं। तो ये संस्था में क्या है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी का मतलब है सब लोग ये इस्कॉन सोसाइटी के विधि विधानों को पालन करना चाहिए, चार नियम पालन करना, और सोलह माला नाम जपना, धोती कुर्ता पहनना, साड़ी पहनना, मंदिर में आना, और भक्तों के साथ कैसे वांछा कल्प दुर्भेश करना चाहिए, माताओं को सीखना चाहिए कैसे दूसरे माताओं के साथ पेश आना, कैसे पर पुरुषों के साथ पेश आना, कैसे सन्यासियों से, गुरु से और ब्रह्मचारियों से कैसे पेश आना, और पति के साथ अपने भक्ति करते करते पति को कैसे सेवा करना चाहिए, और घर के लोगों के साथ जिम्मेदारियों कैसे निभाना चाहिए भक्ति के साथ साथ। इस तरह पुरुषों को भी सीखना चाहिए, गृहस्थ भक्तों को उनका कर्तव्य क्या क्या है, और उनको पत्नी, अपने बच्चे, बाकी स्त्रियाँ और सन्यासी, गुरु, ब्रह्मचारी के साथ उनका संबंध क्या है। तो अपने अपने स्थिति में उनको जो भी नियम विधि विधान दिया गया है उसको पालन करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है तब हमारे समस्या खड़ा हो जाता है। उदाहरण में बताता हूँ आपको, अगर पैसा जो भी आप कलेक्ट करते हैं रथ यात्रा के लिए, जन्माष्टमी के लिए, उसको मंदिर को दे देना चाहिए। जैसे हमारे पूना मंदिर में कभी हम 1000 बुक छापते हैं तो अभी तक सिर्फ 400-500 किताब वापस लौटा है, रसीट, बाकी रसीट बुक वापस नहीं आया है। क्या हुआ उसका? कोई कोई पैसा इकट्ठा किया है, पैसा भी घर में है, रसीद बुक भी है, तभी भूल से उसके बीवी वो पैसा को लेकर खर्चा कर देती है। पति को बोलती है कि आपने रखा था उधर कपड़ में, मैंने निकाल कर खर्चा कर दिया। अब सोचता है कि अभी 40,000 में किधर से निकाल कर दूंगा, तो मंदिर को बोलता है कि मैं बाद में दे दूंगा, अभी दूंगा। इस तरह कभी कभी भगवान के पैसा का दुरुपयोग हो जाता है, समझे ना आपने। इस तरह पुरुषों को प्रचार करना चाहिए, पुरुषों को, माताओं को प्रचार करना चाहिए, माताओं को। खास करके अगर कोई माता की समस्या है तो एक पुरुष और उसके धर्मपत्नी साथ में बैठकर उनकी समस्या को सुलझाना चाहिए। इस तरह कोई पुरुष है, किसी माता से वो अकेले गाइडेंस नहीं लेना चाहिए। वो पति पत्नी दोनों साथ में ही उसको गाइडेंस देना चाहिए, पुरुषों को भी, क्योंकि हमारे संस्था का अनुभव है कि अगर कोई स्त्री एक अकेले एक पुरुष के साथ गाइडेंस लेती है तो दोनों का पतन होने की संभावना है, तो गलत दिशा में जाने की संभावना है। तो ये सब इसको कन्फर्मिटी बोलते हैं। कन्फर्मिटी मतलब है क्या है, संस्था में जुड़, संस्था का क्या क्या नियम है उसका हमें पालन करना चाहिए। हमें ऐसे तो कुछ लोग हैं वो यात्रा निकालते हैं, यात्रा लेके साथ समय, तो यात्रा में जाने वाले लोग चाय पीते हैं, कॉफ़े पीते हैं, अगर वो तंबाकू खाते हैं तो लोग बोलेंगे इस्कॉन के लोग तंबाकू खाते हैं बोलेंगे वो। तो हम जिन व्यक्ति को लेके जाते हैं, हम ऐसे ही लोगों को लेके जाना चाहिए जो सब नियमों का पालन करते हैं इस्कॉन में। जैसे एक लड़का आया मेरे पास, बोला कि प्रभु जी मुझे तिलक पहना कर, कैसे पहना मालूम नहीं, पहना हो तो तिलक पहनाया मैंने उसको। तो दोपहर को जब मैं मार्केट में गया कुछ खरीदने के लिए, देखा कि वो लड़का आ रहा है दूसरी दिशा में, तो सिगरेट फूंक रहा है, तो तिलक भी है सिगरेट भी फूंक रहा है वो। तुरंत मैं सड़क पार करके भाग कर पकड़ा उसको, बोला कि अरे मूर, सुबह मैंने पाना है तुमको तिलक, लेकिन तिलक पान कर सिगरेट फूंके तो इस्कॉन के बारे में लोग क्या सोचेंगे लोग। तो तुरंत मैं बोला या तो तिलक को निकाल दो नहीं तो सिगरेट को फेंक दो, दोनों में से एक करो, समझा ना आपने। तो हमें लोगों को सही चीज़ों को फॉलो करने के लिए सिखाना चाहिए। दूसरा है यूनिटी, कोऑपरेशन। तो गौरव कृष्ण प्रभु ने मुझे इसके बारे में भी कुछ बताने के लिए बोला था कि कोऑपरेशन के बारे में, जब भक्त लोग साथ में आते हैं। तो आप में से एक भक्त से मैं विनती करूंगा कि आप खड़े होकर आप बता सकते हैं, समुद्र मंथन लीला जो है वो लीला से भक्तों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ लायक लेसन है उसमें से, लेकिन लीला को संक्षिप्त रूप में 10 पंक्तियों में कोई बता सकते हैं?
असुरों के बीच में कभी भी शत्रुता थी हमेशा, और देवता हार गए तो देवताओं को सलाह दी गई कि अगर आपको भगवान स्वयं सलाह देते कि आपको अगर जीतना है तो आपको शत्रु के साथ मिलकर ये कार्य हो सकता है, अगर आप अकेले अकेले पाना चाहोगे अमृत को तो असंभव है, तो जो शत्रु है उसको भी आपको साथ में लेना पड़ेगा और दोनों मिलके ही ये कार्य हो सकता है। और देवताओं ने ये बात मान ली और देवताओं ने कहा कि फिर समुद्र मंथन होगा और अमृत निकलेगा।
असुरों और देवताओं के बीच में शत्रुता है ही, फिर भी भगवान ने उनको बोला कि आप दोनों साथ में आकर कुछ करो तभी अमृत प्राप्त होगा। इस तरह घर में भी कभी कभी पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, लेकिन इतना झगड़ा हो जाता है कभी डाइवर्स के बारे में भी सोचते हैं कभी कभी, लेकिन वो डाइवर्स क्यों नहीं करते हैं कोई बता सकते हैं? हाँ, बच्चों के कारण बताते हैं कि बच्चे लोग रोएंगे, नहीं तो बच्चों को बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगा भविष्य में, इस तरह सोचकर माँ बाप क्या करते हैं, वो डाइवर्स नहीं करते। वेरी गुड, थैंक यू। और किस कारण है, और लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अरे डाइवर्स कर दिया आपने, उसके बारे में लोग ऐसे पूछेंगे। और कुछ कारण, दोनों फैमिली डिस्टर्ब हो जाएंगे, एक व्यक्ति दो व्यक्ति नहीं, दोनों परिवार के संबंधियां बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्या है इस तरह हो गया ऐसे, परिवार दोनों परिवार डिस्टर्ब होंगे। बहुत अच्छा, और कुछ कारण है? तो जैसे इन लोगों ने बताया अभी, इस तरह कभी कभी पति पत्नी जानते हैं कि हम दोनों को जमता नहीं है, फिर भी वो एडजस्ट करते हैं, है ना, इन चीज़ों के लिए। इस तरह भक्तों के साथ भी आते समय कभी कभी क्या होता है, थोड़ा मतभेद हो जाता है, झगड़ा होता है। अभी आप बताइए, ये भक्तों के बीच में जब मतभेद होता है, एक ही मंदिर में काम करते हैं, दोनों सेवा करते हैं, तो मतभेद होता है, झगड़ा होता है, वो किस कारण के लिए वो लोग कोऑपरेट करेंगे, कोई बता सकते हैं? किस किस, हाँ बोलिए प्रभु जी। गुरु को संतुष्ट करने के लिए, गुरु बोलेंगे अरे झगड़ा मत करो, आप लोग जुड़कर काम करो, तो गुरु को वो चिंता बढ़ाना नहीं चाहते हैं। गुरु को अगर हम दोनों झगड़ा करेंगे तो, आपने कहानी सुना ना, दो लड़के थे, शिष्य थे, जो गुरु के दो पांव को मसाज कर रहे थे, है ना। तो एक व्यक्ति बोला कि हमको मसाजिंग में, हमने एमए डिग्री प्राप्त किया है, एमए मसाजिंग। तो दूसरा शिष्य बोला कि तुमने डिग्री प्राप्त किया लेकिन तुमको प्रैक्टिकल मालूम नहीं है, हमने अपने हमारे दादाजी से गांव में सीखा है मसाज कैसे करना। तो वो व्यक्ति बोला अरे तुम मुझे निंदा करते हो डिग्री प्राप्त करने के बाद भी, तो वो गुरु के यह पाँव में चिमटी दिया उसने, तो वो व्यक्ति ने गुरु के यह पाँव में चिमटी दिया, गुरु को क्या बुरा हाल हो गया, तो वो तुरंत जग गए गुरु। गुरु बोले कि अरे शिष्य तुम्हारे झगड़े में मेरा चिमटी मिल रहा है मुझे, ऐसे। तो इस तरह गुरु के चिंता को कम करने के लिए शिष्य लोग कोऑपरेट करते हैं। और कुछ कारण है हम क्यों कोऑपरेट करते हैं, कोई बता सकते हैं? बोलिए माता प्रभुपाद जी की। हाँ माता बता रहे हैं कि प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, प्रभुपाद मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर हम झगड़ा करेंगे तो गाड़ी रुक जाएगा ना, आगे नहीं जाएगा। जैसे अगर ट्रेन, कभी कभी ट्रेन जाते समय स्टेशन मास्टर को दरवाजा, ये रेलवे गेट बंद करना है, अगर बंद नहीं किया वो, तो गुड्स वाला नीचे आकर उसके कॉलर पकड़ कर लाफा दे रहा है उसको, लेकिन गुड्स गाड़ी रुक जाता है ना। इसलिए गाड़ी रुकना नहीं चाहिए, मिशन बढ़ता रहना चाहिए। बहुत अच्छा बताया उन्होंने। और
हरे कृष्णा, कई बार ऐसा होता है प्रभु जी की भक्तों के जब झगड़े होते हैं तो ग्रुप बाजी भी रहती है उसमें थोड़ी बहुत, तो उसमें बात जब बाहर फैलती है तो कोई अच्छे भक्त भी बीच में से छूट जाते हैं या मन मुटाव होके वहां निकल जाते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया माता ने, कभी कभी अच्छे अच्छे भक्त निकल जाते हैं कांग्रीगेशन से, वो मंदिर आना ही बंद हो जाता है, प्रोग्राम में आते नहीं है, भक्ति भी माला भी छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि बड़ा झगड़ा चल रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर की दुनिया में जो हो रहा है वो ही इधर भी हो रहा है, तो हमको नहीं चाहे करके भक्ति को ही छोड़कर चले जाते हैं लोग। इससे हमारे हमारे संस्था के लिए बड़ा नुकसान होता है। बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए विष्णु देखिए कितने महान हैं कि असुरों को, देवताओं को भी साथ में लाकर जोड़कर उन्होंने काम करवाया अमृत को निकालने के लिए, कितने महान है।
तो दोनों मिलकर फिर एक समझौता हो गया। हाँ, तो पहले तो सारे भयभीत हो गए देवता।
हाँ करेक्ट,
यहाँ थे हम। तो देवताओं ने कहा कि अमृत निकलेगा और फिर ये असुर भी अमृत का पान करेंगे और ये भी तो फिर अमर हो जाएंगे। तो फिर दोनों को लाभ मिलेगा। तो भगवान ने कहा उसकी चिंता आप मत करो, उसकी चिंता मैं करूंगा।
करेक्ट करेक्ट,
आपको केवल कार्य करना है।
करेक्ट,
बस मैं जो कहता हूँ उतना करिए, बाकी जो अमृत का क्या करना है वो मैं सोचूंगा। तो हमें भगवान पर विश्वास करके अपने कार्य को करते रहना चाहिए।
करेक्ट।